ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय आठ, भगवान नृसिंह द्वारा असुर राज का वध, श्लोक संख्या 51। श्री चारणा ऊचु हरे तवांग्रि पंकज भवाप वर्ग मात्रिता यदेश साधु हृच्छय तया सुरः समापितः। श्रीचारणा ऊचु हरे तवांग्रि पंकज भवाप वर्ग मात्रिता यदेत साधु हृच्छय तया सुरः समापितः। श्रीचारणा ऊचु हरे तवांग्रि पंकज भवाप वर्ग मात्रिता यदेत साधु हृच्छय तया सुरः समापितः। सिद्धार्थ बोली श्री चारणाः ऊचुः। चारण लोक के निवासियों ने कहा हरे हे भगवान, तब तुम्हारे अंग्रि पंकजम चरण कमल भव अपवर्गम संसार के कलमश से मुक्त होने के लिए एकमात्र शरण आश्रिता शरणागत यत, क्योंकि एषः यह साधु हृत शयः समस्त ईमानदार मनुष्यों के हृदयों में संकट त्वया आपके द्वारा असुरः असुर हिरण्यकशिपु समापितः मार डाला गया। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। चारण लोक के निवासियों ने कहा हे प्रभु, आपने उस असुर हिरण्यकशिपु को विनष्ट कर दिया जो सारे निष्कपट पुरुषों के हृदयों में आतंक बना हुआ था। अब हमें शांति मिली है, हम सभी सदैव आपके उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं जो बद्ध जीव को भौतिक कलमस से मुक्ति दिलाने वाले हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले श्लोक के शब्दों को पढ़ेंगे, क्योंकि शब्दों में भी बहुत चमत्कार है। सबसे पहले तो क्या है, श्री चारणा ऊचु है, चारण लोग बोल रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु का जब नरसिंह भगवान ने वध किया तो अलग अलग प्रकार के लोग स्तुतियां कर रहे हैं, है ना। तो मैं गिन रहा था कि मतलब शुरू से ये कितने नंबर के लोग हैं, तो 11वें नंबर में है चारणा। ब्रह्मा जी, रुद्र और देवता, मनु, इन सब थे। और कुल मिलाकर भी और आगे भी चलता रहेगा, तो मेरे ख्याल से 19 प्रकार के लोग हैं जिन्होंने स्तुतियाँ की हैं। तो इसमें चारण चारण स्तुति कर रहे हैं ये, है ना। चारण उसे कहते हैं जो स्वर्ग के गवैये होते हैं। गंधर्व और चारण लगभग एक जैसे हैं, कुछ अंतर होता है गंधर्व और चारण में, है ना। लेकिन चारण जो है मतलब बहुत अच्छी कविताएं बनाते हैं, गंधर्व गान करते हैं, गान करने में बहुत निपुण है, और चारण जो है कविता बनाने में बहुत निपुण है। तो श्लोक की कविता भी आपने देखा है, कुछ विशेष है लगा ना गाने में, लगता था कुछ विशेष है। तो चारणों की कविता विशेष कविता उन्होंने बनाई है ना, तो चारण उनको कहते हैं। तो चारणों ने कहा तो क्या कहा, हरे सत्य पहले शब्द क्या है, हरे। हरे का मतलब क्या है, भगवान हरे को जब संबोधित किया जाता है तो हरे बनता है ना। हम लोग हरे कृष्ण मंत्र में जब हरे बोलते हैं तो प्रभुपाद ने दूसरी व्याख्या की है, हरे का संबोधन भी हरे है और हरा का संबोधन भी हरे है। तो हम लोग जो हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं उसमें हरे ये किसके लिए है, हरा के संबोधन के लिए, हरा मतलब राधा रानी है ना। और हरे के संबोधन में भी हरे होता है ना? तो कोई अगर इस हरे कृष्ण मंत्र में अगर हरि के लिए संबोधन मान ले तो वो भी ठीक है। हरे कृष्ण यानी हरि कृष्ण और राम इन तीनों का संबोधन है, हरि का संबोधन हरे, कृष्ण का संबोधन कृष्ण ही होता है, राम का संबोधन राम ही होता है। तो इस तरह से भी माना जा सकता है कि हरि कृष्ण और राम ये तीन बीज हैं इसके, है ना। लेकिन अगर राधा कृष्ण के जो भक्त हैं तो वे इसका जो है मानते हैं हरे किसका संबोधन, हरा का, राधा रानी का, तो हरे कृष्ण, ठीक है ना। तो यहां पर जब हरे शब्द प्रयोग कर रहे हैं चारण तो किसके लिए संबोधित कर रहे हैं, हरि के लिए, नरसिंह भगवान के लिए, हरे यानी हे हरे। तब अंग्र पंकजम आपके चरण कमल, तब अंग्री पंकजम, पंकजम का मतलब है कमल, अंग्र माने चरण, आपके चरण कमल, भवाप वर्गम, भव में अपवर्ग हैं, भव में अपवर्ग हैं, भव का मतलब है ये भौतिक संसार और इसमें पावर्ग होता है, पा फा बा भा मा, ये पांच अक्षर हैं, है ना। इनके अर्थ हम चर्चा करेंगे, है ना, जो हम नहीं चाहते हैं ये पांच चीजें हैं इसमें, और आ लगा देते हैं आ अपवर्ग, इसका मतलब ये पांच चीजें ना हों। तो भौतिक संसार में ये जो पांच चीजें हैं जिनको हम नहीं चाहते हैं, है ना, तो आपके चरण कमल उनको दूर कर देते हैं, इसलिए आपके चरण क्या है, भव अपवर्ग हैं, यानी भौतिक संसार में पावर्ग को दूर करने वाले हैं, पावर्ग को मिटाने वाले हैं, पांच चीजों को मिटाते हैं। तो भवापवर्गम आपके चरण कमल, भव अपवर्गम है आश्रिता, आश्रिता का मतलब हम लोग आश्रित हो गए, आश्रिता बहुवचन है, वयम आश्रिता, हम आश्रित हो गए आपके चरण कमल के, हम आश्रित हो गए क्योंकि आपके चरण कमल क्या है, भाव में अपवर्ग हैं। फिर यत, दूसरी पंक्ति क्या है, यत एस, यत का मतलब है क्योंकि, क्योंकि तो कारण क्या है, हमने आपके शरण कमलों की शरण ली है, इसका कारण क्या है, यत एस, एस माने ये कौन, जो मरा पड़ा है, कौन, हिरण्यकशिपु, एस साधु हृच्छयत, साधुओं के हृदय में सोने वाला, क्षय का मतलब है शयन करने वाला, सोने वाला, ये साधुओं के हृदय में सोने वाला असुर, तोया असुरः समापिता, आपके द्वारा ये असुर जो साधुओं के हृदय में सोने वाला था, समापिता समाप्त कर दिया गया है, साधुओं के हृदय में सोता था, तो प्रभुपाद शब्दांत में आतंक बना हुआ था, तो वो सोता था और सब साधु जो है आतंकित थे, उसे भयभीत थे। अब हम सुनिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने नरहरि या नरसिंह देव के रूप में उन दुष्टों का वध करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं जो निष्कपट भक्तों के मन में अशांति उत्पन्न करते हैं, अशांति उत्पन्न करते हैं, वो सोता है और भक्त लोग अशांत होते हैं, भक्तों के हृदय में उसको वो सोता है, वो मजा लेता है और भक्त लोग जो है अशांत रहते हैं, तो प्रभुपाद लिखते हैं निष्कपट भक्तों के मन में अशांति उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हिरण्यकशिपु ने जो है ये नियम बना दिया था, ये नियम बना दिया था कि कोई हरि का कीर्तन नहीं करेगा। ये हरे कृष्ण वाले बहुत कीर्तन करते हैं, इन सब का कीर्तन उसने बंद करा दिया था, है? तो नियम बना दिया था और अपना सोता था मस्ती से, और भक्त लोग जो है उसका चिंतन करते थे कि ये दुष्ट सो रहा है, अगर हम लोग कीर्तन करेंगे तो हमें दंड देगा। तो ये जो है भक्तों को जो है मतलब आतंक बना हुआ था और सोता था, तो वो सोता था, उसने नियम बना दिया था और सोता था, है? और भक्तों को जो है मतलब एक अशांति इसने पैदा कर दी थी, तो भक्तों के हृदय में ये सोता था, है? तो वो तो सोता था अपने घर में महल में, इन भक्त उस लोग का चिंतन करते थे कि ये दुष्ट सो रहा है, है? और हम लोग अगर कीर्तन करेंगे तो ये हमें दंड देगा, इसने नियम ऐसा बना दिया, कानून ऐसा बना दिया है ना। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं कि अशांति उत्पन्न करते हैं जो, तो नरसिंह भगवान क्या करते हैं उनको दंड देते हैं, निष्कपट भक्तों के मन में अशांति उत्पन्न करते हैं, उन दुष्टों का वध करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं नरसिंह भगवान। जैसे कि चांद काजी हैं, तो चांद काजी ने भी जो है कि कानून बना दिया था कि कोई जोर जोर से कीर्तन नहीं करेगा, तो घरों के अंदर जो है जो कीर्तन करते हैं तो आवाज़ घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, और घर से बाहर आवाज़ निकली तो सब संपत्ति जब्त कर लेंगे और मुसलमान बना देंगे, जाति संपत्ति ले लेंगे और जाति ले लेंगे, और जाति लेना बड़ा आसान था, मुसलमान अपनी सुराही का पानी डाल दे सिर में तो जाति चलेंगे, उस समय ऐसा चल रहा था वातावरण, तो भक्तों को जो है बड़ा आतंक बन गया था, और वो सोता था चांद का जी अपने आराम से सोता था, तो भक्तों के हृदय में वो सोता था अशांति उत्पन्न करता था, है ना। तो भगवान जो है नरसिंहदेव उसकी छाती में जब वो सो रहा था तो उसकी छाती में चढ़ बैठे, है? और बात नहीं की, सीधे अपना नाखून घुसेड़ा उसकी छाती में, है? तब बात की अपना नाखून की छाती में घुसेड़ दिया, है? तब वो जागा, थर थर कांप रहा है, है? तब नरसिंह भगवान बोले कि तूने आज मेरे भक्तों का मृदंग फोड़ा है, मैं तेरी छाती फोड़ दूंगा। तो बहुत कांप रहा था, तो नरसिंह भगवान कहते हैं दया आ गई, ठीक है आज छोड़ देता हूं, तूने ज्यादा अपराध नहीं किया है, लेकिन आगे से अगर अपराध करेगा तो पूरा वंश सहित उसको नष्ट कर दूंगा, पूरे वंश सहित नष्ट कर दूंगा, है ना। तो ये तो घटना हुई, लेकिन भक्तों को तो कुछ पता नहीं चला, तो भक्तों का तो भय दूर नहीं हुआ, भक्तों का तो भय दूर नहीं हुआ, है ना। तो भक्तों का भय दूर करने के लिए, क्योंकि अगर वो मर जाता चांद का जी तो भक्तों का भय दूर होता, है ना। लेकिन भक्तों का भय कैसे दूर होगा जब तक कि वो खुद ना बताए कि मुझे ऐसा दंड मिला है, आगे से मैं नहीं करूंगा, है ना। इसी चैतन्य महाप्रभु फिर कीर्तन करते हुए गए और उसके घर को घेर लिया, उसके घर का जो है सब उजाड़ दिया, बगीचा उजाड़ दिया, और फिर सामने उसको बुलाया, आओ सामने, इधर आओ सामने, और फिर उससे पूछा कि आपने जो है जो कानून बनाया था कि कीर्तन नहीं करेंगे भक्त लोग, तो कीर्तन तो होता रहा, लेकिन फिर तुमने क्यों नहीं कीर्तन बंद कराया। तो चांद का जी क्या बोला कि आपको सब लोग गौरहरी कहते हैं, मैं भी आपको गौरहरी बोला करूंगा, बात को जो है बदलने के लिए, वो बताना नहीं चाहता था कि असल में बात क्या हुई, अपनी लज्जा की, अपने लिए बड़ी लज्जा की बात थी, तो क्या बोला, बात को बदल दिया, आपको सब लोग गौरहरी कहते हैं, मैं भी आपको गौरहरी बोलूंगा। भगवान कहते हैं मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कहता है कि गौरहरी आपके प्रश्न का उत्तर मैं अकेले में दूंगा, लेकिन भगवान तो जानते थे उत्तर, तो भगवान जानते थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि ये खुद बोले इन भक्तों के सामने जो डर रहे हैं, तो भक्तों का डर कैसे दूर होगा जब खुद बोलेंगे, अगर भगवान बोलेंगे तो भी भक्तों का डर दूर नहीं होगा जब तक वो खुद नहीं बोलेंगे। तो भगवान क्या बोले, है? कि ये सब भक्त जो लोग जो है मेरे से अलग नहीं है, ये जो भक्त लोग हैं ये मेरे से अलग नहीं है, है? तुम इनको मुझसे अलग मत समझो, सबके सामने बोलो बोलो। तो फिर उसने बताया कि मतलब एक शेर मेरे ऊपर चढ़ा और उसने जो है नाखून घुसेड़ दिया और सबको जो है अपना कपड़ा उतार करके छाती में नाखून का दाग दिखाया, नाखून का निशान दिखाया और कहता कह गया कि आगे से जो है मैं कीर्तन नहीं बंद कराऊंगा, आगे से मैं कीर्तन बंद नहीं कराऊंगा है? और मेरे वंश में जितने भी आगे होंगे भी वो कभी भी कीर्तन बंद नहीं कराएंगे, है ना। तो भगवान उसने मुझसे कहलाया, है ना। तो ये भी एक प्रकार से समाप्त करना है। चांदकाजी को भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने समाप्त नहीं किया, उसकी है उसका वध नहीं किया, लेकिन वो भी एक बधी है एक प्रकार से। भक्तों का भय दूर हो गया, उसने खुद अपने मुंह से बताया। तो जब तक वो व्यक्ति खुद अपने मुंह से ना बताए कि मुझे क्या दंड मिला है और मैं अब डर गया हूं, तब तक भक्तों का डर कैसे दूर होगा। जब वो स्वयं अपना डर बताए कि मैं कितना डरा हुआ हूं, आगे से मैं नहीं करूंगा कीर्तन बंद, तब तक भक्तों का डर कैसे दूर होगा। तो ये जो है भगवान की विधि है। जितना पर्याप्त नहीं था कि उसको डरा दिया भगवान ने, जरूरी है कि वो खुद अपने अपना डर बताए सब भक्तों के सामने, तब भक्तों का डर दूर हो, है ना। तो ये भी समाप्त करना है ना। उसी प्रकार से बंबई में भी जो है जो मंदिर का निर्माण हो रहा था जुहू में है, तो श्रीमान एन की घटना आती है प्रभुपाल लीलामृत में कि श्रीमान एन जो है उन्होंने बहुत बाधा डाली थी मंदिर के निर्माण में और यहाँ तक कि नगर पालिका को जो है कुछ पैसे दे करके और वहाँ के जो है आदमियों को बुलवा करके और मंदिर तोड़वा दिया और वो जो है फिर राधाराज बिहारी को भी खंडित करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी जो है मतलब भगवान की कृपा से कुछ ऐसा ऊपर से आदेश आया कि वो जो है उनका काम जो है रोका गया और फिर रातोंरात मंदिर भी बनाया गया। तो काफ़ी लंबी विस्तृत घटना है, लेकिन उसी रात में जो है श्रीमान एन को जो है क्या हुआ, दिल का दौरा हुआ और मर गए, उनका शरीर छोड़ गया ना। तो नरसिंह भगवान ने उनकी भी छाती को फाड़ दिया, दिल का दौरा पड़ा और समाप्त हो गए। तो वो कहता था कि मैं राधाराज बिहारी को मतलब अपने सामने हटवाऊंगा, निकलवाऊंगा, इस अपनी जमीन से बाहर निकालूंगा, है ना। और उसकी लाश निकाली गई फिर राधाराज बिहारी के सामने उसकी ही लाश निकली कि तू निकल। तो नरसिंह भगवान ने जो है मतलब किया, प्रभुपाद ने प्रार्थना की तो इस तरह से बाधा दूर हुई। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि निष्कपट भक्तों के मनों में अशांति उत्पन्न करते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भक्तों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए संसार भर में अनेक संकटों तथा अवरोधों का सामना करना होता है, किंतु जो आज्ञाकारी दास भक्तिपूर्वक भगवान का उपदेश देता है उसे जान लेना चाहिए कि नरसिंहदेव सदैव उसके रक्षक होते हैं। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो रहा है। तो ये घटना और भी है, विदेश में ही घटना घटित हुई कि एक भक्त था जो प्रभुपाद की पुस्तकें वितरण कर रहा था, तो उसके सामने एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक गुंडा था, तो वो आया, उसने आक्रमण कर दिया और बेचारा भक्त अकेला था। तो वो भक्त जो है बेचारा जय नरसिंह देव ऐसे बोलते हुए एक दुकान में घुस गया और दुकानदार ने समझ लिया कि मतलब क्या स्थिति है। उसने तुरंत फोन किया, वहाँ की पुलिस की जो सेवा है बहुत मतलब तुरंत होती है, बहुत फास्ट पुलिस की सेवा है। तुरंत पुलिस आई और उसको पकड़ करके ले गई, है ना। और थोड़ी देर के बाद वही व्यक्ति जो है उसके सामने आया, वो भक्त जो है फिर से किताबें वितरण करने लगा। तो वो जो जिसने आक्रमण किया था थोड़ी देर के बाद आया उसके बाद और पूरे शरीर में पट्टियां बंधी उसकी, पूरे शरीर में पट्टियां बंधी हैं। क्यों, पुलिस ने मारा उसको और फिर पट्टियां भी की उसकी। तो पूरे शरीर में पट्टियां बंधी हैं और फिर आया उस भक्त के पास और बोला, कैन आई परचेज वन बुक फ्रॉम यू। इस तरह से जो है नरसिंह भगवान रक्षा करते हैं। तो यहां पर एक भाव ये भी है कि ये जो साधुओं के हृदय में सोता था आपने इसको मार दिया। क्यों? क्योंकि आपके स्थान में ये सोता था जहां आपको सोना चाहिए, है? तो आपके स्थान में सो रहा था, है? तो आपके बिस्तर में कोई सोए तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जहां आप सोते हैं वहां पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति सोए और बिना परमिशन के सोए, बिना सूचना के सोए, और आप आए सोने के लिए और देखें ये कहां से आ गया, तो गुस्सा आएगा। तो साधुओं के हृदय में है, साधु नाम हृदयम तो हम, साधु हृदयम मय हम, साधु नाम हृदयम तो हम, मदन्यते न जानंती ना हम तेभ्यो मनागत, है ना। तो साधु कहते हैं मैं तुम्हें रहता हूँ। तो परमात्मा के रूप में भगवान सोते नहीं है, परमात्मा के रूप में तो भगवान जागरूक रहते हैं, है? अष्टदल कमल है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान जो है क्या है, खड़े हैं, बैठे भी नहीं है, सोने की बात तो बहुत दूर है, भगवान जो है खड़े रहते हैं, है ना। तो सब प्राणियों के हृदय में परमात्मा जो है बहुत सचेत हैं, जागरूक हैं, खड़े रहते हैं। लेकिन जो साधु होते हैं, जो भक्त होते हैं भगवान के, तो उनके हृदय में परमात्मा का स्थान भगवान ले लेते हैं और भगवान सोते हैं, भगवान जो है विश्राम करते हैं हृदय में, है ना। और जब भगवान विश्राम करते हैं, भगवान सोते हैं, तो उनको बहुत आनंद आता है, भक्तों को बहुत आनंद आता है। तो भगवान विश्राम करते हैं, भगवान नियम बना देते हैं कि दिन रात मेरा कीर्तन करो, मेरा श्रवण करो, तो भक्त लोग दिन रात श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, और भगवान सोते हैं और भक्त जो है आनंद लेते हैं, है ना। और जब असुर सोता है हृदय में तो वो भगवान का चिंतन नहीं कर सकते हैं, है? उनको जो है उस असुर का चिंतन होता है, है? कि ये दुष्ट अगर मैं कीर्तन करूँगा तो ये जो है दंड देगा, है? तो जब भक्तों के हृदय में जब वो दुष्ट असुर सोता है, है? तो उनको जो है बहुत डर होता है, है ना, बड़े अशांति, बहुत भय उत्पन्न होता है, है ना। और भगवान सोते हैं तो बहुत आनंद होता है, है ना। ऐसा है ना, गोविंद विश्राम क्या है वो, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो गोविंद विश्राम करते हैं तो जो है साधुओं को जो है बहुत सुख मिलता है, है ना। तो भगवान ने क्या किया है, इसको मार डाला है, और अब आप सोइए, है ना, हृदय में। तो इस तरह से जो है अब इसमें जो शब्द है भव अपवर्गम, आपके जो चरण कमल हैं ये इस भव में अपवर्ग पैदा करते हैं, यानी पवर्ग को दूर करते हैं। तो पावर्ग में जैसे हिंदी वर्णमाला में कई वर्ग हैं जिनमें पांच पांच अक्षर होते हैं, कावर्ग, चावर्ग, पावर्ग, तावर्ग, है ना, ऐसे वर्ग है ना, तो पांच पांच अक्षर के होते हैं सभी, है? तो पावर्ग में पांच अक्षर हैं, पा फा बा भा मा, है ना। तो पा का मतलब क्या है, पराभव, इस भौतिक संसार में आपको हमेशा पराभव होती है, आप असफल होते हैं, इसलिए कहा गया है असफलता ही सफलता की कुंजी है, है? तो ये भौतिक संसार का ही नियम है, असफलता ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको सफल होना है तो असफलता का आपको वरण करना पड़ेगा, असफलता स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन भगवान के धाम में ये नहीं है, कोई भी कार्य करते हैं तो तुरंत सफलता प्राप्त होती है, कोई असफलता की बात ही नहीं। भौतिक संसार में असफलता हमेशा असफलता मिलती है, है ना। तो ये पा, ये नियम है इस भौतिक संसार का। दूसरा था, था का मतलब है फेनिल, फेनिल का मतलब है झाग, मुंह से झाग निकलना, है ना। जब ज्यादा परिश्रम होता है, जैसे घोड़े हैं तो घोड़ों के मुंह से झाग निकलता है ना, ज्यादा परिश्रम करते हैं, है ना। तो बहुत परिश्रम इस भौतिक संसार में क्या है कि बहुत परिश्रम, जीव को कुछ भी कार्य करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, है ना। लेकिन भगवान के धाम में बिना परिश्रम के सब काम होते हैं, इच्छा मात्र से सब कार्य हो जाते हैं, क्योंकि तो वहां पर काम धेनु गौ हैं, कल्प वृक्ष हैं, चिंतामणियां हैं, है ना। तो इच्छा करते ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है ना, यानी यहाँ पर व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ता है ना, ये फा है। दूसरा है, तीसरा है बा। बा का मतलब है बंधन, है ना। तो कितने प्रकार के बंधन है, है? समाज के बंधन है, परिवार के बंधन है, इस शरीर का अलग बंधन है, कई प्रकार के बंधन है। जो कार्य आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप बंधे हैं, और जो कार्य आप नहीं करना चाहते वो करने पड़ते हैं बंधन के कारण, करने पड़ते हैं। तो कई प्रकार के बंधन हैं, है ना। ये वहाँ पर कोई बंधन नहीं है, वहाँ पर जो है जीवन ऐसा है, मुक्त जीवन है, है? वहाँ कोई बंधन नहीं है। प्रत्येक भक्त भगवान की सेवा अपनी स्वेच्छा से करता है, हाँ, उसे किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है कि करना पड़ेगा। हर व्यक्ति बंधन में है, कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में नहीं जाना चाहता लेकिन बंधन है उसको, अगर नहीं जाएगा हाँ तो तनख्वाही नहीं मिलेगी, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, है ना, इसलिए जाता है। तो सब बंधन है, इसलिए सवेर उठ करके स्नान करना पड़ता है, है? और भोजन करना पड़ता है, है? जितने भी काम है सब बंधन के लिए हैं, जिनको कि नहीं करना चाहता है लेकिन विवश होकर करना पड़ता है, ये बंधन है। और चौथा है भा। भा का मतलब भय, हमेशा भय बना रहता है व्यक्ति को, है ना। तो भविष्य में जो है मतलब क्या होने वाला है कुछ भी निश्चित नहीं है, तो भविष्य का जो है भय बना हुआ है, कोई भी संकट आ सकता है, किसी भी समय संकट आ सकता है, है? और सबसे बड़ा भय क्या है, मृत्यु का भय है। और पांचवा है मां, अंत में मृत्यु भी आती है, केवल ये नहीं कि मृत्यु का भय हो लेकिन मृत्यु ना हो, मृत्यु भी आती है ना। तो पांच जो है ये चीज है जो अनिष्ट हैं, जो जीव नहीं चाहता है लेकिन उसको प्राप्त होते हैं ना। लेकिन भाव का मतलब क्या है कि इस भौतिक संसार में अपवर्गम यानी पावर्ग दूर कर देते हैं। तो भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने से जो भक्त होते हैं अगर भौतिक संसार में भी रहें तो भी वे पावर्ग में नहीं होते हैं, अपावर्ग में नहीं, मतलब अपवर्ग, हाँ, उनके लिए वो वैकुंठ का ही वातावरण बना रहता है, वैकुंठ का ही वातावरण बना रहता है, हाँ? उनको जो है ना तो पराभव होता है, ना फेलियर, ना परिश्रम होता है, ना कोई बंधन होता है, ना भय होता है, और ना मृत्यु होती है। अगर मृत्यु होती है तो शरीर बदलते हैं, जैसे वस्त्र बदलते हैं वैसे शरीर बदलते हैं, वो तो वो मृत्यु नहीं मानी जाती। तो भौतिक संसार में रहते हुए भी वे पाप वर्ग में नहीं होते, है ना। तो ये जो है भगवान के चरणों की ये जो है मतलब विशेषता है। गीता में भगवान कहते हैं गुणान एतान अति तीन देही देह संबंध भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो मृतम अशुते। किस देह में रहते हुए ही देही गुणों से अतीत हो जाता है, प्रकृति के तीन गुणों से अगर मुक्त हो जाता है तो देह में रहते हुए ही वो देह में बंधा नहीं है। जीव जो है भौतिक शरीर में बंधा हुआ है, कैसे, तीन गुणों से। गुण का मतलब बंधन, तीन प्रकार के जो गुण हैं यानी बंधन है, सत्व रज तम, इनसे जीव बंधा हुआ है शरीर के साथ में। लेकिन वो गुण से अतीत हो जाता है, इन गुणों से मुक्त हो जाता है, तीन गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है, तो शरीर में रहते हुए भी उसको जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी का जो है कष्ट नहीं होता। गुणान एतान अति तीन देही देह संबंधवान जन्म मृत्यु जरा दुख खैर विमुक्त अमृतम अश्नते। जन्म मृत्यु बुढ़ापा के दुखों से वो मुक्त है, अमृत प्राप्त करता है। तो भाव होते हुए भी उसका मतलब पावर्ग नहीं है, अपवर्ग। जैसे पहले जब मैं छोटा था तो जगह जगह दीवारों में लिखा रहता था कि मच्छर रहेगा मलेरिया नहीं, पहले लिखा रहता था मच्छर रहेगा मलेरिया नहीं, कुछ इस प्रकार का उन लोगों ने ऐसा अभियान छेड़ा था कि मच्छर रहेगा नहीं मलेरिया नहीं रहेगी। उसी प्रकार से यहाँ पर आप समुद्र में हैं लेकिन तो अभी आप सुरक्षित हैं और पावर्ग नहीं है आपके, आप पावर्ग से मुक्त हैं, है ना। तो फिर भक्तों के लिए जो है कुछ अंतर नहीं पड़ता कि वो वैकुंठ में रहें या इस भौतिक संसार में, क्योंकि जहां पर भी हैं वहीं उनके लिए वैकुंठ है, इसलिए वे नरक में जाने में भी कोई अंतर नहीं समझते। दिव्यवा भविवा ममास्तु वासु नरके वा नरकांतक प्रकामम, चाहे मेरा निवास स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी में हो, चाहे नरक में हो। अवधूरित सारधार बिंदौ चरणों से मरणे भी चिंतयामी, तो आपके चरण कमल का चिंतन करूं, बस यही मेरी मांग है। मैं केवल इतनी मांगता हूं कि आपके चरण कमलों का चिंतन करूं, तो फिर नरक और पृथ्वी और स्वर्ग सब क्या है, वैकुंठ जैसा है ना। जैसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, तद वीर गायन महामृत मग्न चित्ता नैवो दुजे पर दुरत्य वैतरण्यास, तद वीर गायन महामृत मग्न चित्ता है ना। तो आपके गुणों का गान जो महाअमृत है, उसमें मेरा चित्त डूबा हुआ है, इसलिए मुझे जो है वैतरणी, जो नरक में वैतरणी नदी है, उससे भी मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज भी जो है प्रार्थना करते हैं। तो भक्त लोग यही प्रार्थना करते हैं कि आपके चरणों का चिंतन करें या आपका गुणगान करें, तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि भौतिक संसार में या वैकुंठ में जाएं। तो इस तरह से जो है भगवान के चरण कमलों का जो है चमत्कार है, ऐसा है। अब एक पुस्तक जो मैंने पहले भी बताई थी, विष्णुप्रिया देवी ने जो लिखी है, और मेरे पास 5 खंड कैसे कमरे में आए थे, अभी भी रहस्य बना हुआ है कि ताला लगा था बाहर और वो 5 खंड मेरे कमरे में कैसे आ गए। उसमें प्रत्येक श्लोक की जो है कविता बनाई हिंदी में, सरल शब्दों में। तो कविता उन्होंने जो बनाई है उसको मैं लिख करके लाया हूँ, आप सुनिए बड़े ध्यान से। और इस श्लोक में जो बात बताई गई है वो किस तरह से बड़े सरल शब्दों में कविता बनाई है। सज्जनों के हृदयों को पीड़ित जो हर पल करता था, सज्जनों के हृदयों को पीड़ित जो हर पल करता था, हे प्रभु इस दुष्ट को है नष्ट आपने कर दिया। हम तो आपके चरण कमल की शरण में हैं सदा, जन्म मृत्यु रूप भवबंध से देते जो मुक्त करा। 4 पंक्तियों में ये कविता बनाई विष्णुप्रिया ने, है ना, अच्छा है ना। जिस तरह से प्रत्येक श्लोक की कविता उन्होंने बनाई है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, हैंड माइक है, हैंड माइक। अच्छा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि भगवान के चरण कमल की शरण लेते हैं, मुख कमल की शरण क्यों नहीं लेते, है ना। चिंतन, भगवान के चरण कमल का चिंतन करते हैं, भगवान के मुख कमल का चिंतन क्यों नहीं करते हैं। भगवान के चरण कमल का चिंतन करने का मतलब क्या है? सबसे पहला जो भक्ति में कदम होता है वो भगवान के चरण कमल की शरण लेना है ना। तो वो चिंतन का मतलब शरण लेना है। सबसे पहले जो भक्ति में जो कदम होता है वो शरण लेना होता है। और शरण क्यों लेना है? क्योंकि भय, इस संसार में भय है ना, कष्ट है, तो हम भगवान के चरण कमल की शरण लेते हैं। भगवान के चरण कमल की शरण लेते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने को भगवान के चरणों से भी नीचे स्वीकार करते हैं। है? तो अपनी स्थिति जो है आपको कैसी मानना है, कि आप भगवान के चरण कमलों से भी जो है बहुत नीचे हैं। तो शरीर में जो चरण हैं वही सबसे नीचे होते हैं, है ना, चरण ही सबसे नीचे होते हैं। तो उनसे भी नीचे आप बनिए, तृणादपि सुनिचेन। तो ये भावना क्या है, चैतन्य महाप्रभु तृणादपि सुनिचेन, तिनके से भी ज्यादा सुनीच, मतलब बहुत नीच बनना आपको, कि आप बहुत ही तुच्छ हैं। तो तृण जो है चरणों के नीचे पड़ा रहता है, चरणों के नीचे तिनका पड़ा रहता है ना, तो आप उससे भी नीच आप बनिए। तो सबसे पहला जो कदम है वो ये है, क्योंकि इस भौतिक संसार का जो सिद्धांत है वो ये क्या है कि मैं बड़ा हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं नियंता हूँ। तो यही जो है कारण है जीव का इस भोग बंधन का, इस भौतिक संसार में बंधन का, यही कारण है ना। तो इस भाव को सबसे पहले मिटाना और अपने अंदर भाव डाल लाना है तुच्छता का, तो भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना है ना। तो ये बहुत आवश्यक है कि मैं उनके चरणों का दास हूँ, मैं उनके आपके चरणों की धूल, कृपया तव पाद पंकज स्थित है धूलि सदर्शन विचिंता है। तो आप कृपा कृपा करके अपने चरण कमल की धूलि के समान मुझे मानिए, है ना। तो चरण कमल की धूल, तो धूल जो है चरण कमलों के नीचे पड़ी रहती है, तो बहुत तुच्छ, तो अपने को बहुत तुच्छ समझना। तो सबसे पहला ये कदम है भगवान के साथ संबंध जोड़ने का, है ना। लेकिन फिर जो है संबंध हमारा भगवान से जब शरणागति का पहले होता है तो फिर हमें सेवा प्राप्त होती है, है ना। तो शरण लेना ये शांत भाव है, भक्ति में शांत रस आपको प्राप्त होता है, आप शरणागत होते हैं उनके चरणों की शरणागत होते हैं। लेकिन फिर दास रस, उसके बाद फिर दास रस आता है कि आप जो उनके दास बनते हैं, तो उसमें भी आप सेवा करते हैं और चरणों की सेवा करते हैं, आप बहुत ही मतलब तुच्छ हैं, नीचे हैं भगवान के, तो ये जो है मतलब भगवान के चरणों की सेवा है, है ना। और इस प्रकार से जब भक्त जो है भगवान की सेवा में लगता है तो फिर भगवान के गुणों का स्मरण करता है, भगवान के सौंदर्य का स्मरण करता है, और भगवान का जो है वो मुख कमल का भी दर्शन कर सकता है, चिंतन कर सकता है और सौंदर्य का आस्वादन कर सकता है भगवान के मुख कमल का, है ना। तो चरणों की शरण लेने का मतलब यही है कि मैं आपका जो है मतलब बहुत तुच्छ सेवक हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, है ना। तो ये जो है मतलब होती है, ये भावना होती है, है ना। तो फिर भगवान रक्षा करते हैं, तो भगवान तो रक्षा करेंगे तो अपने हाथ से रक्षा करेंगे, उनके हाथ में क्या है, चक्र है, गदा है, रक्षा करते हैं, है ना। तो भगवान तो अपने हाथ से रक्षा करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन भगवान के हाथों की शरण लेने की विधि नहीं है क्या, भगवान के हाथों की शरण में, है ना। भगवान के हाथों की शरण ले सकते हैं, लेकिन पहले आपको भगवान के चरणों की शरण लेनी है, फिर भगवान के हाथों की भी शरण ले सकते हैं। करावलंबम मम देहि विष्णु, कि अपने हाथ का सहारा दीजिए मुझे। तो भगवान जो है जैसे पिता और पुत्र का संबंध बन जाता है, तो पुत्र जो है अपने पिता का हाथ पकड़ता है, है ना। तो पिता जो है उसको खड़ा करता है, अपने पुत्र को खड़ा करता है, चलाता है, है ना। तो फिर बहुत से कार्य होते हैं, लेकिन जैसे जैसे संबंध मतलब होता है, निकट का संबंध होता है, तो फिर जो भक्त है वो भगवान के जो है कर कमल की भी शरण ले सकता है, हाथों की भी शरण ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन चरणों की शरण लेना सबसे पहले आवश्यक है। दूसरा प्रश्न क्या था आपका, और चिंतन, चिंतन, चिंतन जो है, चिंतन का मतलब है कि सबसे पहले जब हम भय की स्थिति में हैं तो हम भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते हैं, अभय चरणारविंद रे, है ना। तो भगवान के चरणों में अभय का निवास है, क्योंकि भगवान के शरीर में सब अलग अलग जो है मतलब देवता निवास करते हैं, जैसे नेत्रों में सूर्य का निवास है, मन में चंद्रमा का निवास है, है ना, कानों में दिशाओं का निवास है, हृदय में धर्म का निवास है, पीठ में अधर्म का निवास है, है ना, इस तरह से भगवान के शरीर में जो है सब अलग अलग जो है देवता निवास करते हैं। और चरणों में कौन है? अभय। चरणों में क्या है? अभय, है ना। तो जब तक आपको भय लगा हुआ है इस भौतिक संसार का, तब तक आप भगवान के चरणों का ही चिंतन करिए, चरणों का चिंतन करिए। और चरणों में जो बने हैं उनके चिन्ह, चरण चिन्हों का उसमें क्या है? वज्रांकुश ध्वज सरोरोह लांछनाढ्यम, वज्र अंकुश कमल, ये सब जो है जो चिन्ह है भगवान के चरणों के, उनका चिंतन करिए। तो ये जो है आपके भय को दूर करेंगे, आपके कष्ट को दूर करेंगे, चिंता को दूर करेंगे। तो ये विधि है। श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार से क्रम है कि आप सबसे पहले श्रीमद् भागवत अध्ययन करते हैं, तो पहला और दूसरा स्कंध क्या है? भगवान के दो चरण कमल हैं, है ना। तीसरा चौथा स्कंध क्या है? भगवान के दो जंघाएं हैं। पांचवा स्कंध भगवान की नाभि है। छठा स्कंध वक्षस्थल है, और सातवां स्कंध उससे ऊपर का हिस्सा है, छाती है, मतलब पहले तो इधर है और सातवां स्कंध छाती, और आठवां नवा स्कंध दो भुजाएं हैं, नहीं नवा स्कंध है गर्दन है, और सातवां आठवां, अच्छा ठीक है, पांचवा स्कंध नाभि है, छठवां स्कंध वक्षस्थल, और सातवां आठवें दो भुजाएं हैं, और नवा स्कंध कंठ, और दसवां स्कंध भगवान का मुख है ना, और ग्यारहवां स्कंध भगवान का ललाट, और बारहवां स्कंध भगवान का शीर्ष है ना। तो दसवां स्कंध भगवान का मुख कमल है ना। तो दसवें स्कंध का आस्वादन आप तभी कर सकते हैं जब आप और पहले के स्कंधों की आपने जो है कथा सुनी है, अध्ययन किया है। तो ये जो है विधि है भगवान के मुख कमल का भी दर्शन जब हम करते हैं तो शुरू करते हैं चरणों से, चरणों से करते हैं ना। तो चरणों से जो है अगर आप करते हैं तो आपके अशुभ मिट जाते हैं, वो विचार मिट जाते हैं कि मैं भगवान के समान बन सकता हूँ या भगवान बन सकता हूँ। तो ये जो विचार होते हैं तो भगवान के चरणों का ही चिंतन करना चाहिए, तब जो है कहीं आप भगवान के मुख कमल का दर्शन कर सकते हैं। जब आपके अंदर वो सेवा की भावना आ जाए तब वो आस्वादन कर सकते हैं उनके मुख का। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? तो अच्छा, आपका इनकी समीक्षा तो दम दिया जोर से बोलो, जोर से। सुनाई पड़ रहा है? नहीं सुनाई पड़ रहा है, थोड़ा माइक और पास में।
एक दिन प्रभु जी अपने कमरे में कुछ भक्तों को श्री चैतन्य भागवत से कथा सुना रहे थे, और कथा में इस प्रकार का प्रसंग आया था कि श्री जगन्नाथ मिश्र जी जगन माता शशी देवी को बता रहे थे कि रात में मैंने एक स्वप्न देखा कि हमारे पुत्र निमाई ने संन्यास लिया है, और श्री अद्वैताचार्य श्रीमदान प्रभु श्री गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित इन महापुरुषों के साथ पुत्र निमाई को भी नृत्य करते देख कर स्वप्न की इस बात से श्री जगन्नाथ मिश्र जी बड़े चिंतित थे कि उनके पहले पुत्र विष्णु को संन्यास लेकर पहले ही भक्त होकर धर्म छोड़कर चले गए हैं, और अब कहीं निमाई भी ऐसा ना कर रहे। प्रभु जी ने जब ये वाली कथा सुनाई फिर कुछ और भी कथाएं सुनाई, तो कथा के अंतिम में प्रभु जी कथा का महत्व भी बढ़कर सुना रहे थे। कथा के हाथ में था कि जो भी कथाओं को सुनाता है उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति होगी। उसी समय कोई सहस्त्रनाम नामक भक्त जो दिल्ली स्थित जनकपुरी में रहते हैं, वे कभी कभी प्रदर्शन दे रहे आते थे प्रभु जी का, और आज वे अपने साथ कुछ आयुष प्रदर्शन के साथ साथ चार फोटो भी लाए। वो फोटो हमारे पास अभी है, वो फोटो थे श्री राधा कृष्ण के चरणों के और और एक सिद्ध चरण के चरणों का फोटो और एक विशेष दिन से करते हुए पंच तत्व का फोटो लेकर आए। मतलब ये था कि फोटो उसी व्यक्त है प्रभु ने बताया कि जो भी सदा में स्नाता है उसको भगवान के चंद्र भाव के चरण का आनंद से मिलते हैं। तो आए फोटो में नृत्य करते हुए पंच तत्व का भी दर्शन करते हैं। इस प्रकार से नृत्य करता हुआ फोटो पहले हमने नहीं देखा होगा। ये कितना बड़ा आश्चर्य हुआ इस कथा में कि प्रभु जी की कथा का जो महात्म्य बता रहे थे वे ही फोटो सहजता प्रभु लेकर आ गए। प्रभु जी ने कथा का महात्म्य ये बताया ही था जो इस कथा में कथा को सुनाता है उसे चिंतन चरणों की प्राप्ति होती है। तो जो फोटो सहजता प्रभु लेकर आए थे उसमें राधा कृष्ण के चरणों की फोटो थे। वास्तव में राधा कृष्ण के चरणों को मिला देने पर श्री चैतन्य महाप्रभु के ही चरण बनने श्री श्री राधा कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण बनेंगे। प्रभु जी की ये इतनी भक्ति निधि है कि वृंदावन दास ठाकुर जी कथा का महात्मा का तत्व बता रहे थे कि जो भी इस कथा को पढ़ेगा उसे चैतन्य महाप्रभु के चरण की प्राप्ति होगी। तो पढ़ा ही था कि तुरंत चरण की प्राप्ति हो गई। वास्तव में ये ही भक्ति है क्योंकि हमारे आचरण में ऐसा बताया कि शुभ भक्ति श्री कृष्ण को आकर्षित कर पाना इसलिए शुभ भक्ति को श्री कृष्णामर्शन कहा जाता है। ये ही तो प्रभु जी ने शुभ भक्ति की भावना से कथा पढ़ी और भगवान ने तुरंत की कथा के लिए परिणाम दिया और राधा कृष्ण के चरण की प्राप्ति का आश्वासन और फोटो भगवान ने भेज दिए। ऐसा बहुत सारे ऐसे समुकार हैं प्रभु जी सुनाते हैं अभी तक हो चुके हैं। इस तो मैंने लिखा है कि भगवान कितना प्रमाणित करते हैं प्रभु जी कथा सुनाते हैं तो कथाओं को तो इंगित हमें इंगित करते हैं कि भक्तों को इस प्रकार की कथा सुननी चाहिए।
ये सब कथा की शक्ति है। कभी कथा के जो है जैसी घटना साथ साथ अगर होती है तो कथा की शक्ति से होती है। वैसे बहुत सी घटनाएं लिखी हैं जो कि मतलब ऐसे ही जब कथा पढ़ रहे हैं कथा सुना रहे हैं उसी समय वैसी घटनाएं हुई तो ये प्रभु जी लिख रहे हैं और बहुत मतलब इनका जो है वो बन गया है काफ़ी लीलाएं बन गई इस प्रकार की। तो
आपने बताया कि साधुओं के हृदय में वो जो है सौदा था, जैसे कि जब जैसे सौदा है कोई व्यक्ति तो उसको जब जगाते हैं तो उसको शामिल करता है, उसको परेशानी महसूस होती है जो जगाएगा उसको भी शाम करेगा। तो इस जब साधु लोगों को डर था कि ये सो रहा है, इसके उत्तर सभी जगह घूम रहे और जैसे इसको पता लगेगा कि ये लोग चिंतन कर रहे हैं तो इतना अंधा है सोने में, मतलब आध्यात्मिकता में वो सो रहा है कि उसको जैसे ही पता लगेगा वो साधु को परेशान करेगा। तो ये बात
और कोई प्रश्न है तो मैं प्रश्न करूं। इसमें जो बताया असुर समाप्त किया, असुर को आपने समाप्त किया तो हिरण्यकश्यप को तो भगवान ने समाप्त किया है ना। कभी कभी भगवान असुर को नहीं समाप्त करते हैं तो भी वो समाप्त जैसा उसको करते हैं। उसके लिए कोई हमने उदाहरण बताया था क्या, चांद का जी, चांद का जी का भगवान ने वध नहीं किया लेकिन तो भी भक्तों के हृदय से भय निकालने के लिए क्या किया था, कौन बताएगा। हाँ सब भक्तों को लेके गए उसके घर गए है? उसके मुंह से कहलवाया है? है? तो उसने अपना जब डर बताया तब भक्तों का डर दूर हुआ है ना। तो समाप्त करने का मतलब ये है कि भगवान भय समाप्त करते हैं तो डर मतलब जड़ से भय समाप्त करते हैं। अगर भगवान कहते थे कि नहीं तुमको कोई डर नहीं है तुम लोग कीर्तन करो तो भी डर बना रहता है कि नहीं। भगवान है? भगवान के कहने से भी डर बना रहता है ना। तो उसी से कहलवाया और उसने दिखाया अपना सीना खोल के दिखाया है, नाखून का निशान दिखाया है ना। इस तरह से धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधिका रमण भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय।